सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रीडिंग फ्रॉम भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 8 अटेनिंग द सुप्रीम टेक्स्ट 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। Translation and prepared by Srila Prabhupada. After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. Purport. Since this temporary material world is full of the miseries of birth, old age, disease and death, naturally he who achieves the highest perfection and attains the supreme planet, Krishna Loka, Goloka Vrindavan, does not wish to return. The supreme planet is described in Vedic literature as Avyakta and Akshara and Paramagati. In other words, that planet is beyond our material vision and it is inexplicable. But it is the highest goal, the destination for the Mahatmas, great souls. The Mahatmas receive transcendental messages from the realized devotees and thus gradually develop devotional service in Krishna consciousness and become so absorbed in transcendental service that they no longer desire elevation to any of the material planets, nor do they even want to be transferred to any spiritual planet. They only want Krishna and Krishna's association and nothing else. That is the highest perfection of life. This verse specifically mentions the personalist devotees of the Supreme Lord Krishna. Those devotees in Krishna consciousness achieve the highest perfection of life. In other words, they are the supreme souls. Om Ajnana Timiranthasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunimiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Binda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Kal ka vishay kya tha? Ravi? Manan kiya kaksha ke baad? Manan karna chahiye na? Jo padha usko pe manan karna chahiye, kya padha? Manan karne se wo vishay अच्छे से हम और अंदर ग्रहण कर सकते हैं। आदित्य
जो सदैव हमेशा स्मरण करता है मेरा, उसके लिए मैं बहुत इजी से ऑप्टेन हो जाता हूं।
और किसको मुश्किल है भगवान को प्राप्त करना? कि कंपैरिजन किस लोगों से, किन लोगों से चल रहा है? अष्टांग योगी जो अपनी साधना से, अपने योग बल पे आध्यात्मिक जगत में जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बहुत कष्ट होता है और फिर भी वो आध्यात्मिक जगत में अगर जाते भी हैं तो भी वो कृष्ण लोक में जाकर के भगवान की शुद्ध भक्त नहीं बन पाते हैं केवल योग साधना से। अंततः उनको भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन क्योंकि उनका जो भक्ति से पहले उनके जो प्रयास हैं वो अपने बलबूते पर हैं, योग साधना के आधार पर हैं, इसलिए बड़ा कष्ट होता है उनको। बहुत सटीकता से उस सभी नियमों का पालन करना पड़ता है और विशेष रूप से कलयुग में तो संभव भी नहीं है। लेकिन इसके विपरीत भगवान बताते हैं, जो अनन्य चेताः सततम् यो माम स्मरत नित्यशाः तस्याहम् सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। वो योगी जो मुझे नित्य रूप से स्मरण करता है वो सुलभता से मुझे प्राप्त कर सकता है। तो नित्य रूप से भगवान को स्मरण करने का तरीका क्या है? पूरा जीवन भर श्रवण कीर्तन इत्यादि से भगवान की सेवा करने से, जब हमें भगवान से अटैचमेंट डेवलप होगा, आसक्ति, तो फिर हम भगवान का स्मरण नित्य रूप से कर पाएंगे। और फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कब मरना है। योगी को तो अपना टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसे कब मरना है, कब प्राण छोड़ने हैं। थोड़ा सा मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन भक्त के लिए ये सब झंझट नहीं है। उसे केवल एक ही चिंता है, अपना जीवन भगवान की सेवा में नियोजित करना है। दैट्स इट। तो उन व्यक्तियों के लिए भगवान कह रहे हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म, ऐसे लोग मुझे प्राप्त करते हैं और उसके बाद में पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम, ये जो दुखालय अशाश्वत ये जगत है इसमें दोबारा उनको पुनर्जन्म नहीं होता है, रीबर्थ ना अपनुवंती। और ऐसे लोग इसलिए महात्मा कहलाए जाते हैं, समसिद्धिम परमानंदा, क्योंकि वो परम गति मेरे धाम को प्राप्त कर गए, माम उपेत्य मुझे प्राप्त किए हैं, कृष्ण लोक को प्राप्त किए हैं, कृष्ण सेवा को प्राप्त किए हैं, इससे फिर उनको पुनर्जन्म नहीं होना पड़ता। तो ये एंटीडॉट है, अगर हमें पुनर्जन्म नहीं चाहिए तो ये करना पड़ेगा, कृष्ण की शरणागति लेनी होगी, तो फिर कृष्ण हमें अपने पास ले आएंगे और फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये दुखालय अशाश्वतम है, अभी हम पहली कक्षा में पढ़ रहे थे कि बुद्धिमानता है कि ये समझना कि जगत दुखालय है, मूर्खता है ये सोचना कि ये जगत एंजॉयबल है, वास्तविकता है कि ये जगत दुखालय है, अशाश्वत है। सो भगवान कृष्ण जैसे बताते हैं भागवत में भी कि इस जगत में भोग करना वो उसी प्रकार से है कि कोई व्यक्ति जो मरणासन हो, मरने के लिए तैयार हो, उसे हम ऑफर कर रहे हैं कि लो अभी मरने से पहले जितना हो सके एंजॉय कर लो, है ना। वो कैसे एंजॉय कर पाएगा, इम्पॉसिबल है ना। तो किसी को फांसी की सजा हो गई तो उससे पहले पूछते हैं उससे ख्वाहिश क्या है तुम्हारी, जो भी ख्वाहिश है सब पूरी कर लो, जो भी खाने की इच्छा है, बट वो और ज़्यादा कष्टप्रद है ये। क्या एंजॉयमेंट करेंगे जब हमें पता है कि अभी मरने वाले हैं, अंदर से इतनी पीड़ा है, तो बाह्य विषय तो वो विष के समान लगेंगे। तो ऐसे ही हम सब की स्थिति ऐसी है, हमको रियलाइज करना है, माया हमको बुला रही है लेकिन वास्तव में ये स्थिति ऐसी है, हम सबको फांसी की सजा हुई हुई है, परमानेंट, वी आर ऑल डेस्टिंड टू डाई एनी मोमेंट, दैट इज द रियलिटी। तो वो न्यूज सबको पता है, वी ऑल नो दैट वी आर गोइंग टू डाई, और फिर हमसे कहा जा रहा है एंजॉय बिफोर यू डाई। सो हाउ कैन वी एक्चुअली एंजॉय, वी cannot actually enjoy because we know we are going to die, इसलिए frustration होता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कितनी बार 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 हमको पुकार के बोल रहे हैं आओ मेरे पास आ जाओ, यहाँ मत रहो, ये दुखालय अशाश्वत है, बट हम लोग इतने ढीठ हैं कि फिर भी टस से मस नहीं होते हैं, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर भी थोड़ा दुख आया थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर लिया, थोड़ा ऐसे कर लिया। जैसे वो दो बहुत आलसी लोग थे, तो एक बार उनके घर में आग लग गई, तो लेटे हुए थे तो सब लोग चिल्ला रहे, अरे घर में आग लग गई बाहर भागो, लेकिन वो इतने आलसी थे कि वो आग लगने पर भी बाहर नहीं भाग रहे थे, तो ऐसे करवट लेके सो रहे थे, तो इधर से बहुत तेज गर्मी, बहुत तेज पीठ जलने लगी, फिर भी बाहर नहीं भागे, करवट बदल ली कि चलो अभी इधर गर्मी, इतने आलसी। तो हम लोग भी ऐसे इतने डल हैं कि इतना कष्ट भोगते हैं फिर भी इस जगत से आसक्ति नहीं जाती है। उदाहरण है जैसे इंद्र को सुअर की योनि जब मिल गई तो वो भी इतने आसक्त हो गए कि वो वापस में ये नहीं जाना चाहते थे, तो ब्रह्मा को उनके सब घर वालों को मारना पड़ा उनको अकल ठिकाने लाने के लिए कि ये दुखालय हमें यहाँ कहाँ फंसे हो। सो वी आर सो डल दैट वी वॉन्ट टू रिमेन अटैच्ड। So much emphasis Krishna is giving again and again, दुखालय अशाश्वत, निकलो। तो वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली कि ये भगवान हमें बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, डोंट स्टे इन दिस वर्टिकल वर्ल्ड, इस जगत में मत रहो, कम बैक टू मी, डोंट प्लान एनीथिंग एल्स, और कोई प्लानिंग मत करो, केवल एकमात्र प्लानिंग हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एज सून एज पॉसिबल। ये दुखालय में है ना, अशाश्वत है ना, इसमें रहने का प्लानिंग क्यों करना है, इससे जल्दी जल्दी भागने का प्लानिंग करना है। कहीं आपको ऐसी जगह में हो जहां पर कि सब तरफ से कष्ट हो, और तो आप क्या प्रयास करेंगे, वहां पर उसको बढ़िया सजाएंगे, हाँ भागने का प्रयास करें, क्योंकि वहां कोई होप ही नहीं है, देयर इज नो होप देयर। तो उसी प्रकार से जगत है, सो वी शुड बी डिटरमिंड कि वी विल act in a way, we will surrender to Krishna, that we will not come back again. दोबारा यहाँ नहीं आना है इस भौतिक जगत में. ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए. दिस विल मरने से पहले वी हैव टू, मरने से पहले मीन मरना तो पता नहीं है, जितना जल्दी उतना जल्दी. वी हैव टू ब्रिंग अवर कॉन्शियसनेस टू द लेवल दैट इट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिससे माम उपेत्य पुनर्जन्म, जिससे फिर पुनर्जन्म नहीं होगा वो हमारा. इसलिए जीवन बहुत गंभीर है, उसको हम लोग ऐसे ही खेलकूद में नहीं व्यर्थ कर सकते हैं, है ना. ये सब खेलकूद ही है ना. अनावश्यक इस भौतिक जगत की चीजों के पीछे भागना वो खेलकूद है. जैसे बच्चे अपने खेलने में टाइम व्यर्थ कर देते हैं, ऐसे ही बड़े बच्चे बड़ा बड़ा चीजों से खेलने में टाइम व्यर्थ कर देते हैं. मेरे को वो जॉब मिलना चाहिए, इतना पैसा, और फिर लोग मेरी प्रशंसा करेंगे. जब डेथ हो जाएगी तो किसकी प्रशंसा करेंगे? शव हो जाएगा, दैट्स ऑल फिनिश. लेकिन हम लोग उसको ऐसे बड़ा बड़ा ये सब खेलते हैं, मेरी ये पोजीशन है, मेरे पास इतना धन है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ. व्हाट इज, इट्स यूजलेस, इट्स जस्ट मैडनेस. केवल एक ही मात्र एक चीज करने के लिए, सम हाउ मेंटेन दिस बॉडी एंड सर्व कृष्णा, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. बाकी सब व्यर्थ है. सो बहुत ये जीवन बहुत गंभीर विषय है ना. समय बहुत कम है एंड गंभीर है, क्योंकि मिजरीज रियल है, कष्ट है, डेथ है, बर्थ की मिजरीज हैं. वी कैन नॉट डिनाई इट, इट्स नॉट जस्ट अ ड्रीम, वी रियली सफर. सो देन केयरफुली. लेकिन माया क्या है, हमको बार बार भुला देती है. होप अगेंस्ट होप, इट गिव्स अस होप अगेंस्ट होप. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, उसको भूल जाओ. ये माया की चाल है. जैसे वो व्यक्ति हमेशा वो जो है वो ऑस्ट्रिच अपनी मुंह को छुपा लेती है शिकारी आने पे, शिकारी अब दिखता नहीं, ऐसे माया हमेशा हमें से उसको ऐसे भ्रम में डाल देती है. हाँ, दुख नहीं है, दुख नहीं है, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, और फिर अचानक दुख दे, और फिर थोड़े समय के लिए हम लोग हाँ बहुत दुख है बहुत, और फिर माया के नहीं नहीं इतना दुख नहीं है, दुख नहीं है, सब हट गया, सब ठीक है, सब ठीक, एंजॉय एंजॉय, एंड देन वी अगेन बिकम कॉन्फिडेंट, यस आई कैन एंजॉय. सो ऐसे हम लोग प्लान नहीं कर पाते ऐसे बाहर निकलने का, ये माया की चाल है. पहले दुख देती है, और फिर जब दुख से बाहर निकलने के लिए कोशिश करते हैं तो हमें इल्यूजन में नहीं नहीं दुख नहीं, दुख नहीं, यहीं रहो यहीं रहो, कोई बात नहीं, अच्छा है. अब फिर एक और पंच, और फिर हम बोलते हैं बाहर जाना है, नहीं 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 नहीं, आई एम हेयर टू सर्व यू, हेल्प यू, कौन बी है. सो इट्स लाइक दैट. सो भगवद गीता सुन करके हमें यू हैव टू वेक अप. क्या ये माया मुझे ऐसे ही नचा रही है? व्हाई आई शुड बिकम अ डांसिंग डॉग इन द हैंड्स ऑफ माया? नो, सरेंडर टू कृष्णा इमीडिएटली विदाउट एनी अदर थिंग. जैसे भक्तिदानंद सरस्वती महाराज के पास जब प्रभुपाद अभय चरण जब पहली बार गए, अभय डे उनका नाम उस समय, चरण दीक्षित नहीं थे, अभय, तो भक्तिदानंद सरस्वती महाराज बोल रहे थे प्रवचन में सरेंडर टू कृष्णा, अर्जेंसी सरेंडर टू कृष्णा. तो अभय उस समय बोले कि अभी इंडिया गुलाम है, पहले इंडिया को गुलामी से बचाना होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, नहीं तो ये भगवत संदेश कैसे फैलेगा, पहले तो भारत को गुलामी से निकालना होगा. तो भक्तिदानंद सरस्वती महाराज बोले नो, दिस इज सो अर्जेंट, दिस बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड स्प्रेडिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो अर्जेंट दैट इट कैनॉट वेट फॉर एनी चेंज, फॉर एनी चेंज इन पॉलिटी, पॉलिटिक्स में चेंज होने के ऊपर ये वेट नहीं कर सकता है उसकी. दिस इज सो अर्जेंट, सो वी शुड अंडरस्टैंड कि इतना अर्जेंट है और इतना इंपॉर्टेंट है कि ये और किसी पे वेट नहीं कर सकता. तो बाकी सब चीज़ें गौण हैं, बाकी सब चीज़ें उसके अनुसार एडजस्ट होनी चाहिए, इस प्राइमरी गोल के अनुसार एडजस्ट होनी चाहिए. प्राइमरी गोल ये रख करके बाकी सब चीजें जो है वो ऐसे एडजस्ट होनी चाहिए जो कि इसके अनुसार अनुकूल हो, उसको हेल्प करने के, दैट्स ऑल. इस जगत में अपने शरीर को मेंटेन करने का यही एकमात्र उद्देश्य है कि ये शरीर से भगवान की सेवा हो पाए, अन्यथा उस शरीर को मेंटेन करने का क्या फायदा है, या अननेसेसरी इसको मेंटेन करने का क्या फायदा है. द ओनली पर्पज बिहाइंड दिस मेटल वर्ल्ड इज टू यूज इट टू सर्व कृष्णा, टू टू एडवांस इन कृष्ण को, बाकी अन्यथा वो सब बंधन का कारण बनता है. द मोमेंट वी डील विद दिस वर्ल्ड और द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड इन फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट इंटेंगल्स अस, वो हमें इंटेंगल करता है. सो ये भगवद गीता का मैसेज ध्यान से, ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, दिस इज टू अप्लाई इन अवर लाइफ सीरियसली. आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिन अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. भगवान आए कहते हैं कि ये आ ब्रह्म भुवनान लोका, फ्रॉम द हाइएस्ट प्लेनेट इन द मेटल वर्ल्ड डाउन टू द लोएस्ट, ऑल आर प्लेसेस ऑफ मिजरी वेयर इन रिपीटेड बर्थ एंड डेथ टेक प्लेस, बट वन हु अटेन्स टू माई अबोर्ड ओ सन ऑफ कुंती नेवर टेक्स बर्थ अगेन. सब जगह मृत्यु है, ये पृथ्वीलोक तो छोड़ो, ब्रह्मलोक में भी मृत्यु है, वहां पर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, कहां बचेंगे इस मेटल वर्ल्ड में? कहीं नहीं. जब तक कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण करेंगे तब तक ऐसी कोई हमारी स्थिति नहीं हो सकती जहां ये दुख नहीं है, जन्म मृत्यु. आ ब्रह्म भुवनाल, कृष्ण हैज डिक्लेयर्ड, आ ब्रह्म भुवनाल, जो ही बनाने वाले हैं भगवान सारे जगत, तो वही बोल रहे हैं देयर इज नो प्लेस, इट्स इम्पॉसिबल. हा ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिन, एवरीवेयर देयर इज रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, लेकिन मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, बट दोज हु कम टू मी नीड नॉट बी बोर्न अगेन. देन कृष्ण से सहस्रयुग पर्यंतम हरियत ब्रह्मणो विदुहु रात्रि युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः. अभी भगवान जब ब्रह्मा की बात आई ब्रह्म लोक की, तो भगवान अभी ब्रह्म का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो ये ब्रह्म लोक, ब्रह्म इतना बड़ा चीज है ब्रह्मा, और उसका लोक ऐसा है, लेकिन फिर भी वहां मृत्यु होती है. तो इसलिए उसको इम्फेसाइज करने के लिए भगवान अभी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जो है सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः, ब्रह्मा की जो दिन है वो कितना बड़ा है वो बता रहे हैं. ब्रह्मा का दिन है सहस्रयुग पर्यंतम, सहस्र थाउजेंड साइकिल्स, कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग की हजार साइकिल मिलाकर के ब्रह्मा का दिन होता है, ये जान लो. रात्रियुग सहस्रांतम, और रात्रि भी उतनी बड़ी होती है. अव्यक्ताद्यक्तया सर्वा प्रभयंतरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके. एट द बिगिनिंग ऑफ ब्रह्मास डे ऑल लिविंग एंटिटीज बिकम मैनिफेस्ट फ्रॉम द अनमैनिफेस्टेड स्टेट, एंड देयर आफ्टर व्हेन द नाइट फॉल्स दे आर मर्ज्ड इनटू द अनमैनिफेस्ट अगेन. सो नाउ कृष्ण इज एक्सप्लेनिंग हाउ दिस क्रिएशन हैपेंस एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर इन बिटवीन. तो ब्रह्मा का जब दिन प्रारंभ होता है तो जीव जो हैं अव्यक्त से व्यक्त स्थिति में आते हैं. तो भौतिक जगत में दो प्रकार की एग्जिस्टेंस है, एक अव्यक्त स्थिति है और एक व्यक्त. व्यक्त मतलब जिसमें कि जीवों को शरीर प्राप्त होता है, स्थूल शरीर, और अव्यक्त जिसमें कि जीव वो उसको एक क्रियाएं करने के लिए, कर्म का फल भोगने के लिए ये शरीर नहीं होता है. तो ये दो स्थिति हैं. तो प्रलय जब ब्रह्मा की रात्रि आती है तो एक आंशिक प्रलय होती है जिसमें कि केवल ब्रह्मलोक और कुछ उच्च लोगों को छोड़कर के बाकी अन्य सभी लोग ध्वस्त हो जाते हैं, वहाँ पे जितने भी जीव हैं वो सब मर जाते हैं. यानी कि उनकी जो आत्माएं हैं, वो जो आत्माएं हैं अगर वो शुद्ध नहीं हुई हैं तो वो भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, पूरी रात भर वहीं रहती हैं. और जब दिन होता है तो ब्रह्मा दोबारा उन सबको शरीर प्रदान करते हैं, इसलिए उसको अव्यक्त से व्यक्त आना कहेंगे. तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार से ब्रह्मा का दिन होने पर अव्यक्त से हम व्यक्त होते हैं, और फिर रात्रि आने पर फिर से अव्यक्त हो जाएंगे, अगर उसके बीच में भगवत धाम नहीं गए तो. सो दैट्स अ विंडो अवेलेबल इन बिटवीन दैट, और वो भी मनुष्य जीवन में भी यही संभव है केवल. तो इसलिए ये दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन. तो ब्रह्मा, और एक दिन ब्रह्मा की मृत्यु होगी, और ब्रह्मा की मृत्यु में सारा का सारा यूनिवर्स, सब जीव देह त्याग करेंगे, अव्यक्त स्थिति में चले जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर दोज हु आर रेडी टू गो बैक होम, बैक टू वर्ल्ड. भूत ग्रामम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलियते रात्यागमे वश पार्थ प्रभवत्य रागमे. अगेन एंड अगेन देन ब्रह्मास डे अराइज ऑल लिविंग एंटिटीज कम इनटू बीइंग एंड विद द अराइवल ऑफ ब्रह्मास नाइट दे आर हेल्पलेसली एनाइलेटेड. तो बार बार ब्रह्मा का जब जब दिन आएगा तो जीवों को शरीर प्रदान किया जाएगा, और जब जब रात आएगी विवशता से उनको समाप्त कर दिया जाएगा. सो हम एक छोटी सी जीवन में डेथ की बात कर रहे हैं, ये तो प्रलय की बात हो रही है. हाउ मेनी डेथ्स वी हैव वी सफर वी एक्सपीरियंस, कैन यू इमेजिन? हर जीवन, हर शरीर मिलता है तो उसमें वी एक्सपीरियंस डेथ, और एक्चुअली एवरी मोमेंट वी आर एक्सपीरियंसिंग डेथ. कितना कष्ट है ना, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, कितनी बार हमको एक्सपीरियंस करना पड़ता है जो हमको जरूरत नहीं एक्सपीरियंस करने की, बिकॉज एक्चुअली वी डोंट डाई, वी डोंट नीड टू एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स, लेकिन क्योंकि हमने अपने को शरीर मान लिया इसलिए हमको सारा एक्सपीरियंस देना पड़ रहा है. सो इंटेलिजेंटली वी शुड वेक अप, व्हाई आई शुड एक्सपीरियंस दिस डेथ, डेथ इज अनप्लेजरेबल, इज मिजरेबल. सो हमें क्यों ये एक्सपीरियंस करना पड़े. जैसे बुरा सपना, कोई आदमी सो रहा है और बहुत बुरा सपना देख रहा है और सो जा रहा है बिना मतलब में, तो अच्छा है उठ जाए, सपना खत्म हो जाएगा बुरा सपना, व्हाई यू शुड अननेसेसरीली बी ट्रबल्ड बाय दैट बैड ड्रीम. तो हमारे लिए बहुत ही जगत इस प्रकार से ही है, इट्स नॉट अ रियलिटी, वी डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड. सो ये इस जगत की जो ये बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज इत्यादि हैं, वी डोंट बिलोंग टू दैट, जस्ट वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस इग्नोरेंस दैट वी डोंट बिलोंग टू दैट. बट वो इग्नोरेंस से बाहर निकलने के लिए वी नीड टू कम टू अवर रियल कॉन्शियसनेस दैट आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा. जब तक वो नहीं होगा तब तक ये इल्यूजन खत्म नहीं होगा, रियलिटी में आने पर ही इल्यूजन खत्म होगा. डार्कनेस से हम कैसे निकल सकते हैं, सूर्य में आने पर डार्कनेस से निकल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकल सकते हैं. तो उसी प्रकार से वी हैव टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस. परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. Yet there is another unmanifest nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. भगवान करुणावश हमको जानकारी दे रहे हैं अपने धाम की. How merciful is Krishna? He is coming here, he is inviting us. Come. This is dukhalayam ashashvatam. But parastasmat tu bhavo anyat. Beyond this, there is another existence, जो मेरा धाम है. अव्यक्तो व्यक्ता सनातना, जो व्यक्त और अव्यक्त, ये मैटर की दो स्टेज हैं, एक व्यक्त और एक अव्यक्त. साइंटिस्ट लोग इसी में ही मैक्सिम घूम रहे हैं. वो अव्यक्त को सोचते हैं दिस इज बिगनिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ मेटल वर्ल्ड, अव्यक्त स्टेज. बट दैट्स नॉट द अल्टीमेट ओरिजिन. अव्यक्त और व्यक्त दोनों कहां से आते हैं, वो उस परस्तस्मात् भाव, वो जो अव्यक्त व्यक्त से परे एक और अव्यक्त है. अव्यक्त मतलब वो मैटर नहीं है, इसलिए वो दिख नहीं सकता है, परसीव नहीं हो सकता है. इस प्रकार से वो अव्यक्त है. आध्यात्मिक इंद्रियों के लिए वो हमेशा व्यक्त है, इटर्नली एग्जिस्टेंट, बट हमारे दृष्टिकोण से हमेशा वो अव्यक्त है कंडीशन स्टेज से. सो वो है आदि उद्गम, दैट इज द ओरिजिन. सो दैट्स वॉट कृष्ण इज गिविंग इन्फॉर्मेशन. अव्यक्त अक्षर इत्युक्त तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. सो क्लियरली कृष्ण स्टेटिंग दैट विच द वेदांतिस डिस्क्राइब एज अनमैनिफेस्ट एंड इनफेलिबल, दैट विच इज नोन एज द सुप्रीम डेस्टिनेशन, दैट प्लेस फ्रॉम विच हैविंग अटेन्ड इट वन नेवर रिटर्न्स, दैट इज माई सुप्रीम अबोर्ड. वो मेरा धाम है जो अव्यक्त और जिसको अव्यक्त अक्षर कहा गया है. अक्षर, अक्षर मतलब शर और एक है अक्षर. शर मतलब विच इज फैलिबल, जो हमेशा ध्वस्त होता है, और अक्षर मतलब जो इटर्नल है, जो कभी ध्वस्त नहीं होता है, दैट इज स्पिरिचुअल. और अक्षर अ से अक्ष तक, जो वर्णमाला है हिंदी की उसमें पहला अक्षर अ है, अ ध्वनि वो पहली ध्वनि है और अक्ष वो अंतिम ध्वनि है. तो अ से लेकर अक्ष तक भौतिक ध्वनियों से जो भी वर्णित है, सभी ध्वनियां कहां से कहां के बीच में, अ से अक्ष तक के बीच में ही सारी, उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही सारी भौतिक ध्वनियां हैं. तो जो भी चीज भौतिक है उसका जो डेजिग्नेशन है वो अ से अक्ष के बीच में होता है, उस ध्वनियों से होता है. तो वो जो इन ध्वनियों से डेजिग्नेटेड है वो सब चीजों से परे का जगत. वो एक और अर्थ है, यानी कि भौतिक जगत से पर, सिंपल शब्दों में. पुरुषस्य परः पार्था भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम. तो भगवान कह रहे हैं द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड सेड हु इज ग्रेटर देन ऑल इज अटेनेबल बाय अनअलॉयड डिवोशन, ऑल्दो ही इज प्रेजेंट इन हिज अबोर्ड, ही इज ऑल प्रोवाइडिंग एंड एवरीथिंग इज सिचुएटेड विद इन हिम. तो कैसे प्राप्त होंगे वो परम स्थिति, कैसे प्राप्त होगी? भक्त्या, ओनली बाय डिवोशन वन कैन क्रॉस ओवर दिस मेटल वर्ल्ड एंड रीच कृष्णाज अबोर्ड. भक्त्या, भक्त्या लभ्यस्तु. अनन्या, कैसी भक्ति? अनन्य, विच इज नॉट कंटेमिनेटेड बाई कर्म एंड ज्ञान. अनन्य भक्ति से ही केवल भगवत धाम जा सकता है, क्योंकि अन्य चीजें जो हैं कर्म ज्ञान, तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाने के लिए सक्षम नहीं है. दे डोंट हैव दैट पोटेंशियल. केवल भक्ति ही के अंदर वो शक्ति है जो कि हमें आध्यात्मिक जगत में ले जा सकती है. पुरुषा से पर पार्थ, वो परम पुरुष जो है वो पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वो कैसे प्राप्त हो सकते हैं? केवल भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं. और वही सुप्रीम पर्सनैलिटी है जो इस भौतिक जगत में कण कण में व्याप्त है परमात्मा के रूप में. सो एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन, इजंट इट? भगवद गीता में सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से बताया है. जस्ट वी हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू दिस नॉलेज. केवल इस ज्ञान के अनुसार अपने को जीना है. Everything is clear, but still people are bewildered. Why? Because they are not faithful to Bhagavad Gita. इसलिए वो लोग परेशान हैं. हरे कृष्णा. Any question? सॉरी, आई कुडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. जब प्रलय होता है तो सब जीव जो हैं वो मर जाते हैं, भगवान के शरीर में चले जाते हैं. शयन नहीं, जब जब ब्रह्मा जी जगते हैं उनकी रात्रि के समय में वो सभी जीव भगवान के शरीर में चले जाते हैं, और जब दोबारा से सृजन करना है तो ब्रह्मा जी फिर वो जीवों को दोबारा से व्यक्त करते हैं, उनको शरीर प्रदान करते हैं. मतलब डाउट ये है कि वो जीव कहाँ चले जाते हैं. हाँ, क्योंकि शरीर खत्म हो गए ना, तो आत्मा तो कभी खत्म होती नहीं है, तो आत्मा को कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा ना. फिर तो उनको कोई शरीर तो मिल नहीं रहा है उस समय, उनको कोई शरीर मिल नहीं रहा है ना उस समय. नो, व्हाट एग्जैक्टली यू आस्किंग? नहीं, जब सत्युग, अलग अलग प्रकार की प्रलय है. सत्युग जब युग परिवर्तन होता है तो वो और छोटी प्रलय होती है. उसमें ऐसा नहीं कि सभी जीव केवल महाप्रलय के समय में भौतिक जगत में सभी जीव खत्म हो जाते हैं. महाप्रलय दैट इज जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है. जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो भी वो आंशिक प्रलय होती है, उसमें सभी जीव नहीं मरते हैं. ब्रह्मलोक है, तपोलोक, महरलोक, वहाँ पर जो जीव हैं वो देह त्याग नहीं करते हैं. उसके नीचे जो हैं स्वर्ग लोग और सबके नीचे, वो सब नष्ट हो जाते हैं. वो जीव केवल अव्यक्त हो जाते हैं, उनका शरीर खत्म हो जाता है. फिर जब दोबारा दिन आता है तो उन जीवों को दोबारा से शरीर मिलता है. लेकिन जब महाप्रलय होती है तो सारे के सारे जीव नष्ट हो जाते हैं. यस, युग परिवर्तन में युग परिवर्तन में भी पृथ्वी लोग भी खत्म हो ऐसा नहीं जरूरी है. लेकिन जब रात्रि होती है तब मृत्यु लोग, ये पृथ्वी लोग, पाताल लोग, उसके और इवन स्वर्ग लोग, वो सब खत्म हो जाते हैं. लेकिन जब युग परिवर्तन होता है तो वो इस प्रकार से प्रलय नहीं होती है, वो और छोटी प्रलय है. यस, ब्रह्मा जी को ये कार्य सौंपा गया है किसका कितना कर्म बाकी है, किसका क्या कर्म फल है, वो सब हिसाब किताब रख के उसको कौन सा शरीर कहाँ उसने स्टॉप किया था प्रलय के समय में, कहाँ उसने रोका था, उसको वही आगे वहीं कंटिन्यू करने के लिए उसको उसी प्रकार का शरीर देना, वो सब कैलकुलेशन वर्मा जी करते हैं। इसलिए वो बुद्धि बुद्धि शक्ति के अवतार हैं, बुद्धि इज हैड दैट इंटेलिजेंस टू डू दैट। स्थिति हाँ, लिबरेशन का मतलब क्या है? भगवान के शरीर में जाना तो लिबरेशन नहीं है रियल में ना, लिबरेशन है भगवान की सेवा करना। भगवान के शरीर में जाने से हम सेवा कैसे करेंगे? तो लिबरेशन है, रियल लिबरेशन है भगवान की सेवा करना। तो वो तो एक डॉर्मेंट स्थिति में उनको डाल दिया गया है, दे आर डॉर्मेंट। लिबरेशन है व्हेन वी आर एक्टिव इन सर्विंग कृष्ण, दैट इज लिबरेशन। तो मृत्यु के समय तो उनको डॉर्मेंट कंडीशन में चले गए, भगवान के शरीर में चले गए। सो दैट इज नॉट परफेक्शन ऑफ लाइफ, दैट इज नॉट लिबरेशन, दैट इज नॉट रियल लिबरेशन। एनीथिंग एल्स? वेल, सबसे पहले बहुत ही जगत को एंजॉय करना है, उसे उसकी इच्छा है कि मुझे भगवान की सेवा नहीं करनी है, मुझे एंजॉय करना है। अभी वो जब एंजॉयमेंट करने की जब इच्छा हुई तो उसको बहुत ही जगत, उसका ऐसा नहीं कि वो बहुत ही जगत में मुझे जाना है, ही जस्ट वॉन्ट्स टू एंजॉय एंड देन गॉड क्रिएट दिस मेटेरियल वर्ल्ड फॉर देम। ये भौतिक जगत की जो डिटेल्स हैं, सो दे आर जस्ट, वो लोग तो केवल हमें भगवान की सेवा नहीं करना, हमें एंजॉय करना है। अभी उसके लिए जगत बनाया गया और फिर उस जगत के सभी नियम, वो तो बहुत बहुत जन्मों के बाद में जाकर के ज्ञान प्राप्त करने पर विद्या शक्ति से हमें दोबारा पता लगता है कि ये सब क्या क्या है ना। तो अगर वो इतने ज्ञानी होते, इतने बुद्धिमान होते कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि यहाँ है तो फिर आते ही क्यों यहाँ पर? तो समस्या तो वही है ना कि दे थिंक दैट वी कैन एन्जॉय, जिसके सामने मृत्यु खड़ी है वो लोग भी नहीं समझ सकते हैं कि मृत्यु की क्या परेशानी है। आप देखो ना, यहाँ सब लोग जानते हैं मृत्यु है, फिर भी देन कितने लोग हैं जो मृत्यु जानते हुए भी तैयार हैं कि इस जगत से निकलना है। यस, मर्ज मतलब वो इस स्पार्क, भगवान देखो भगवान के शरीर में ही तो सब कुछ है ना, पूरा जगत जो है। जैसे जब स्टार्टिंग होती है तो कैसे होता है कि गर्भ तो कषाय विष्णु के नाभि से कमल पुष्प निकलता है ना, तो वो कमल पुष्प के अंदर ही तो सारे जीव होते हैं और सारा ये भौतिक जगत का पूरा मैटर उसी कमल के अंदर, तो सारा रॉ फॉर्म वहीं तो होती है, वहीं से फिर वो डेवलप होता है, अलग अलग लोक बनते हैं, अलग अलग शरीर दिए जाते हैं। तो वो भगवान के शरीर का अंदर भाग है ना वो कमल, तो उनके शरीर के ही अंदर तो थे सब जीव, तो वो उस कमल नाभि में आए, वहाँ कमल में आए वहाँ से। या मतलब वहाँ एंटर होते हैं, उससे पहले भी वो भगवान, जब कमल नहीं है तब भी वो भगवान के अंदर ही हैं, शरीर के अंदर ही हैं। सो दैट ऑल स्टेज इज कॉल्ड अव्यक्त, जब तक उनको शरीर नहीं मिला है, दैट इज अव्यक्त। यस, हर एक अलग अलग ब्रह्मांड में क्या सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग अलग अलग ड्यूरेशन का होगा या एक ड्यूरेशन का होगा? जब भगवान श्वास लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में जाते हैं, और जब श्वास निकालते हैं तो सारे ब्रह्मांड निकलते हैं. सो फ्रॉम दैट इट अपीयर्स कि सारे जो ब्रह्मांड हैं वो एक ही अवधि में सृजित होते हैं और एक ही साथ में उनका सबका नाश होता है. अभी उसके अंतर्गत सहस्र युग पर्यंतम, हजार युग हैं जो कि ब्रह्मा का दिन है. तो यहाँ पर तो एक जनरल डिस्क्रिप्शन ही दिया है सभी के लिए, एक जनरल डिस्क्रिप्शन कि ब्रह्मा का दिन इतना होता है 1000, और सभी ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु है और वो भगवान का श्वास है. सो फ्रॉम दैट डिस्क्रिप्शन इट सीम्स दैट इज सिमिलर इन ऑल द ब्रह्मांड. लेकिन उसके बारे में मैंने कोई विशिष्ट स्पेशली पढ़ा नहीं है, बट फ्रॉम दिस डिस्क्रिप्शन इट अपीयर्स लाइक दैट. क्योंकि बुद्धि योग मतलब जो भगवान से प्राप्त बुद्धि है, जो भगवान से जोड़ती है, उसको बुद्धि योग कहते हैं. तो जब भगवान से बुद्धि प्राप्त होती है तो हम भगवान की सेवा करने के तैयार हो जाते हैं. जब हमारी भौतिक बुद्धि होती है तब हम एंजॉय करने का प्रयास करते हैं. तो इस दृष्टि से वो टर्मिनोलॉजी है अलग अलग. तो इसलिए बुद्धि योग मतलब जो बुद्धि भगवान की सेवा में निष्ठ हो, अदरवाइज दैट इज कॉल्ड भक्ति योग. वो टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है. टर्मिनोलॉजी क्या है, कैसे है, उसका उस प्रोसेस क्या है, वो है चीज क्या है, उसके गुणों को समझना वो इंपॉर्टेंट. टर्मिनोलॉजी इवन शास्त्रों में भी एक ही चीज को अलग अलग टर्मिनोलॉजी से एक्सप्लेन किया गया है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है. लेकिन भगवद गीता में नो बुद्धि योग इन द प्योरेस्ट फॉर्म इज नथिंग बट भक्ति योग. ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान बताते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो सतत रूप से प्रीतिपूर्वक मेरी पूजा करते हैं यानी भक्ति. ददामी बुद्धि योगम, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ. सो बुद्धि योग इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम प्योर डिवोशन सर्विस. इसलिए वो एक है जिसमें हम तपस्या करते हैं या ज्ञान प्राप्त करते का प्रयास करते हैं, और इस हेतु से कि हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएं, या और भी एक निकृष्ट, उससे भी निकृष्ट प्रकार की मुक्ति है कि भगवान के शरीर में लीन हो जाना. तो वो प्रलय आने से पहले ही हम अपने प्रयास से भगवान के शरीर में विलीन होने का प्रयास करते हैं. अंत में प्रलय होने पर तो वो स्थिति आनी ही है. तो इसलिए वो मुक्ति वास्तविक मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि वो नित्य स्थिति नहीं है जीव की. प्रलय आने पर वो स्वाभाविक रूप से वो चीज होनी ही है, हम भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे सभी. जैसे कि ब्रह्म ज्योति में असुर गण भी चले जाते हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान के हाथों मारे आते हैं, तो वो भी ब्रह्म ज्योति में आते हैं, और ज्ञानी योगी जन भी उसी गति को प्राप्त करते हैं. तो इसलिए ये ब्रह्मज्योति में लीन होना, ईर्ष्या करने वालों को भी वही गति मिल रही है. तो इसलिए तपस्या करके वो उस गति को प्राप्त करने का क्या लाभ है. तो उसी प्रकार से भगवान के शरीर में लीन होना और ज्यादा निकृष्ट है, ब्रह्मज्योति में लीन होने से भी ज्यादा निकृष्ट है, क्योंकि उसमें जीव का वो सेवा का अवसर खत्म है पूरा. तो जैसे वो शिशुपाल, वो भगवान के शरीर में विलीन हुआ कुछ समय के लिए, वो अंततः जगह ये हैं हिरण्याक्ष, जय विजय हैं, इसलिए अंततः उनको अपना स्वरूप प्राप्त हुआ, लेकिन उस समय में वो भगवान के शरीर में विलीन हो गए. तो ये असुरों के लिए या जो भगवान से विरुद्ध हैं उनके लिए इस प्रकार की मुक्ति, जो भगवान को शरणागत नहीं होना चाहते हैं, तो उस प्रकार से कोई उसमें विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि अंतिम गति वही है, भगवान के शरीर में वो विलीन हुए हैं। तो मूर्खता है वो उसके लिए तपस्या करना भगवान के शरीर में विलीन होने के लिए। स्पार्क नहीं, कॉन्शियसनेस इज देयर बट जस्ट कॉन्शियसनेस इज देयर, मतलब चेतना है लेकिन ये चेतना नहीं है कि हम कृष्णदास हैं, संकुचित चेतना है, हम हैं, वी एग्जिस्ट, वी आर देयर, दैट्स ऑल, बट दैट वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ये चेतना नहीं है। इंडिपेंडेंट विल तो जहां चेतना है वहां पर इंडिपेंडेंट विल तो रहेगी ही, लेकिन वो विल से वो इच्छा कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू एग्जिस्ट, दैट्स ऑल, वी आर देयर, दैट्स ऑल। इट्स अ डॉर्मेंट स्टेज, डॉर्मेंट मतलब बहुत संकुचित चेतना है उस समय वहां। जैसी चेतना होगी उस प्रकार से इच्छा शक्ति भी वो संकुचित होगी, और एक डॉर्मेंट स्टेज में वो उनका जो शरीर है वो भी डेवलप नहीं है, आध्यात्मिक इंद्रियां भी अनडेवलप्ड स्टेज में है, तो इसलिए वो इंद्रियों से कार्य करना, सेवा करना, वो सब भी अभिलाषाएं नहीं है, बस केवल दे आर, जैसे हम सोते सोते कैसे वी हमारी चेतना संकुचित हो जाती, तो ऐसे ही डॉर्मेंट स्टेज है वो, नॉट एग्जैक्टली मटेरियल स्लीप, क्योंकि यहाँ पर एक भौतिक शरीर में बंधे रहते हैं, वहाँ पर भौतिक शरीर में बंधन नहीं है, लेकिन है चेतना वहाँ पर इस प्रकार से संकुचित ही। और बाकी उसका एग्जैक्ट वर्णन समझना उसको हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि दैट स्टेज इज सो कुछ हिंट जितना हम लोग को शास्त्र मिलता है उतना हम समझ सकते हैं, उसको एग्जैक्टली समझ पाना, एक्सपीरियंस करना, दैट इज नॉट पॉसिबल एंड नॉट नेसेसरी ऑल्सो फॉर अस, जस्ट इट्स अ सम स्टेज विच इज नॉट परमानेंट। ओके, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।